आज हमारे पास जो भी सोर्सेज है ना, जिनमें योग वशिष्ठ के कुछ प्राचीन मूल पाठ हैं, कुछ आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण हैं, और हमारा एक ही मिशन है, आत्म अन्वेषण, मतलब जो सेल्फ इंक्वायरी होती है ना, उसे पूरी तरह से डीकोड करना।
बिल्कुल, और ये कोई साधारण पौराणिक कथा नहीं है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं।
हाँ, वही तो। मतलब सोचने वाली बात है कि राजकुमार राम, जिनके पास सब कुछ है, सत्ता, संपत्ति, सफलता, फिर भी अचानक उन्हें एक बहुत गहरे खालीपन का एहसास होता है।
और फिर महर्षि वशिष्ठ उन्हें उस मानसिक उलझन से बाहर निकालते हैं। आज की इस गहन चर्चा में हम यही देखेंगे
कि कैसे ये प्राचीन संवाद आज के आधुनिक दिमाग के लिए एक बिल्कुल सटीक आईना है ना, जो हमें दिखाता है कि बाहरी सफलता के बाद भी अंदर एक अजीब सा खालीपन क्यों लगता है।
सही कहा, राम की उस मानसिक स्थिति को योग वशिष्ठ में वैराग्य प्रकरण के तहत समझाया गया है।
वैराग्य।
हाँ, ये पहला अध्याय है। अक्सर लोग मानते हैं कि सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाना ही वैराग्य है,
पर असल में ऐसा है नहीं। अगर इसे आज के युवाओं से जोड़ा जाए तो आज की सफलता एक ट्रेडमिल की तरह हो गई है। मतलब स्पीड लगातार बढ़ रही है, सोशल मीडिया की चकाचौंध है।
हाँ, और करियर के बड़े बड़े लक्ष्य भी हैं।
बिल्कुल, इंसान भाग तो बहुत तेजी से रहा है, पर पहुंच कहीं नहीं रहा। मतलब आखिर में सिर्फ थकान हाथ लगती है।
और इसी बेचैनी से वैराग्य की शुरुआत होती है। सोर्सेस बताते हैं कि ये कोई नकारात्मक सोच नहीं है, बल्कि ये असल में एक जागृति है।
अच्छा,
हाँ, जब इंसान को ये समझ आने लगता है कि सफलता, यौवन, रिश्ते, ये सब कुछ अस्थाई है।
पर एक मिनट रुकिए। अगर ये मान लिया जाए कि सब कुछ अस्थाई है, तो क्या ये एक बहुत ही डार्क या नकारात्मक सोच नहीं बन जाएगी? ऐसे तो दुनिया में किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं बचेगा।
देखने में ये नकारात्मक लग सकती है, पर इसका उद्देश्य निराश करना बिल्कुल नहीं है। मतलब वैराग्य का असली मकसद इस भ्रम को तोड़ना है कि किसी की पहचान या खुशी केवल इन बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर करती है।
मतलब जब ये पता होता है कि बाहरी चीजें बदलेंगी, तो इंसान उनका गुलाम नहीं बनता।
सटीक बात है, ये निराशा नहीं, आजादी है।
पर इस आजादी की कीमत शुरुआत में बहुत भारी लगती है, क्योंकि जब बाहरी दुनिया की ये अस्थिरता समझ आने लगती है ना, तो मन में एक बहुत भारी उलझन पैदा होती है।
बिल्कुल, इंसान बिल्कुल दिशाहीन महसूस करने लगता है,
हाँ, जैसे सब कुछ खो गया हो।
और इसी दिशाहीन स्थिति को सोर्सेस के दूसरे खंड मुमुक्षु व्यवहार में समझाया गया है। ये उलझन कोई हार नहीं है, बल्कि आत्म अन्वेषण का पहला कदम है।
मतलब दिमाग का पुराना सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया है और अब एक नए अपडेट की जरूरत है।
हाँ, समाज द्वारा थोपे गए सफलता के पुराने पैमाने अब काम नहीं कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर सब कुछ अस्थाई है और बाहरी चीजों से जुड़ना नहीं है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंसानों को भावनाओं को महसूस करना ही बंद कर देना चाहिए?
नहीं,
मतलब क्या एक पत्थर की तरह बन जाना चाहिए ताकि दुखी ना हो?
अरे नहीं, यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि भावनाओं को मारना इसका लक्ष्य कभी था ही नहीं। असली मुद्दा है भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया, मतलब ऑटो पायलट पर रिएक्ट करने से बचना। किसी तीव्र भावना के आते ही उसमें बह जाने के बजाय एक सेकंड रुककर उसके मूल कारण को समझना जरूरी है।
तो प्रॉब्लम बाहर की दुनिया में नहीं है, इंसान के देखने के नजरिए में है। असली युद्ध मैदान बाहर नहीं, बल्कि इंसान के भीतर है।
बिल्कुल,
पर मन बार बार एक ही तरह से रिएक्ट क्यों करता है? मतलब इंसान जानता है कि बेकार का स्ट्रेस लेना गलत है, फिर भी वही करता है।
इसका जवाब सोर्सेस के अगले हिस्से, उत्पत्ति और स्थिति प्रकरण में मिलता है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें, तो ये अध्याय समझाते हैं कि हमारा मन वास्तविकता को गढ़ता कैसे है। इसके पीछे वासनाओं का सिद्धांत काम करता है। वासनाएं मतलब हमारे गहरे मानसिक संस्कार या पैटर्न्स।
अच्छा, इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जैसे फोन चेक करने की आदत, वैलिडेशन के लिए फोटो डालना, फिर बार बार फोन देखना, और अगर लाइक्स नहीं मिले
तो अंदर एक खालीपन महसूस होना।
बिल्कुल, और फिर ध्यान भटकाने के लिए इंसान वापस उसी साइकिल को दोहराता है। ये एक पक्का पैटर्न है।
बहुत सटीक उदाहरण है। ये ओवरथिंकिंग और भावनात्मक चक्र वासनाओं के कारण ही चलते हैं। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बनी बनाई पटरी पर दौड़ता है। सोर्सेस बताते हैं कि इन मानसिक बंधनों से मुक्ति की शुरुआत होती है अवेयरनेस से, यानी अपनी ही सोच के प्रति जागरूकता।
पर अवेयरनेस इस फोन वाले पैटर्न को तोड़ेगी कैसे? असल में इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है?
होता यह है कि जब कोई अपनी वासना को चलते हुए कॉन्शियसली देख लेता है ना, तो उसका ध्यान उस ऑटोमैटिक लूप में बाधा डालता है।
मतलब अवेयरनेस दिमाग को सबकॉन्शियस ऑटोपायलट से बाहर खींच लेती है।
हाँ, इस माइक्रोसेकंड के पॉज में ही इंसान के पास ये चुनने की ताकत आती है कि पुरानी आदत के हिसाब से रिएक्ट करना है या कुछ नया चुनना है।
यानी उस भागती हुई ट्रेडमिल पर से उतरने की ताकत बाहर नहीं, हमारे अंदर ही मौजूद है।
बिल्कुल, अवेयरनेस आदत की उस रूढ़िवादी ताकत को तोड़ देती है।
तो आज के इस विश्लेषण से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि योग वशिष्ठ दुनिया या परिस्थितियों को नियंत्रित करने की शिक्षा नहीं देता है, बल्कि ये अपने मन को देखने, अनावश्यक मानसिक शोर को कम करने और अपनी ही जागरूकता के प्रति जागरूक होने का रास्ता दिखाता है,
और यही भीतरी शांति और आज़ादी का सबसे सटीक मार्ग है।
तो इस चर्चा को एक आखिरी सोच के साथ यहीं विराम देते हैं।
जरूर।
अगर हमारा मन ही ये तय करता है कि हमारी वास्तविकता और सुख दुख क्या हैं, तो क्या समाज द्वारा बनाई गई सफलता की पूरी परिभाषा ही सिर्फ हमारे मन का एक भ्रम हो सकती है, एक ऐसा इल्यूजन जिसे बिना सोचे समझे दुनिया ने पूरी तरह सच मान लिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शांति से खुद विचार करने की जरूरत है।